आगे, अब ये सूरा, इस सूरत का एक नाम ना सूरतुल आदल व रहमा भी है। सूरतुल आदल व रहमा, रहमा भी है ये सूरत, क्योंकि ये कमजोरों को उनके हक दिलाती है, उनके पर रहम की बात करती है। आप इस सूरत में देखेंगे ये आयात जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे भी, आपको ऐसे लगेगा कमजोरों के साथ अल्लाह खड़ा हुआ है। कमजोर माशरा उसको समझते हैं ना, ये क्या, ये यतीम मिस्कीन, ये हमें क्या पूछेंगे। लेकिन याद रखो ये कमजोर नहीं है, जिसके साथ अल्लाह खड़ा है वो थोड़ी कमजोर है। और जो इस पोजीशन में है, अगर कोई यतीम है या कोई कमजोर औरत है और उसके हक दूसरे दबा रहे हैं, तो वो भी इन आयतों से हौसला ले कि तुम फिक्र ना करो, देखो अल्लाह तुम्हारे लिए वकालत करता है, अल्लाह तुम्हें हकूक दिलाता है। अलग बात है कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने अहकाम दे के बता दिया कि वो किसके साथ है। वआतुल यतामा अम्वालहुम, और दो यतीमों को उनके माल, यानी यतीमों के जो सरपरस्त है ना, जो गार्डियन है, उनको कहा जा रहा है कि जब यतीम बालिग हो जाए तो उनके माल उनको दे दिया करो। अरे अब ये नहीं कि अब आपकी कस्टडी में था यतीम का माल, तो अब वो बड़ा भी हो जाए बालिग भी हो जाए तो उसको कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर है माल देना किसको अच्छा लगता है। माल जब एक दफा हाथ में आ जाता ना, फिर इंसान कहता है कैसे जाने दूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के बारे में ये फरमाया है कि सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम के साथ बदसलूकी की जाए। आपको पता है इस्लामी माशरे में यतीम खाने नहीं होते थे, ये तो अब हमारे माशाल्लाह मॉडर्न जमानों की इजाद आते हैं यतीम खाने, या ये इन लोगों की चीजें हैं जो हमने भी ले ली। पहले वक्त में जब इस्लाम आया है और इस्लाम ने ये यतीमों का जो हकूक दिए हैं, उससे पहले भी ऐसे ही था, लेकिन यानी यतीमों को यतीम खानों में किसी में दाखिल नहीं कराया जाता था, अपने खानदान के ही अफराद उनकी सरपरस्ती किया करते थे। हाँ, मगर उनसे बुरा सलूक करते थे। आज तो लोगों ने कहा कि भाई ये झंझट ही खत्म करो, भाई हमसे नहीं रखे जाते ये यतीम अपने घर में, इनकी जिम्मेदारियां हमसे नहीं ली जाती, जाओ इनको यतीम खानों में दाखिल करो। वो यतीम खानों में दाखिल, उनके माल खुद हड़प कर लिए। और मैंने आपको बताया ना, हम तो जमाना जाहिलियत में रह रहे हैं, हमारे पास तो अभी इस्लाम आया ही नहीं। ये किताबें पढ़ी हुई हैं हमारे घरों के अंदर, कुरान भी है, हदीस की किताबें भी मौजूद हैं, कौन मानता है इनको। हाँ मुसलमान है हम बड़े कुरान और खत्म करने वाले रमजानों में और नमाजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन जहाँ पे माल की बात आती है ना, पैसे की, वहां पे बड़ा मुश्किल है ये, वहां पे नहीं हम इन चीजों को मानते, पैसे में अपनी मर्जी है। हाँ सदका खैरात कर देंगे इसमें से, मगर हड़प करो जहां से मिल रहा है, हराम का हलाल का डजंट मैटर। तो ये यतीम खाने वाली चीज इंस्टीट्यूट जो था ना, ये इस्लामी मुमलिकत की चीज नहीं है। इस्लामी मुमलिकत में तो उसी के रिश्तेदार, मसलन एक बच्चा यतीम होता है, उसी के चच्चा उसकी किफालत करें, वो बड़ा भाई है वो किफालत करे, दादा है वो किफालत करें। नबी अलैहिस्सलाम जब यतीम हुए थे तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत किसने की थी, एंड में आके तो चच्चा ने ही की थी ना। लेकिन अब के वक्त के अंदर वो चच्चा कहते हैं मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, ये जाए यतीम खानों में। अब एक बच्चे को सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए होता, उसको शफकत भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, तरबियत भी चाहिए, वहां पे कौन तरबियत करेगा। हाँ बस ठीक है, वो एक महरूमी के अंदर रहे वहां पे, और यतीम खानों के जो हालात, और वो कभी अगर आपने देखे हो तो आपको पता चले कि उन बच्चों की महरूमी कैसी होती है। ये जंगों में इतने बच्चे यतीम हुए, बेसहारा हो गए, और उनकी एक दफा मैंने देखी थी, एक बच्ची ने जमीन पे ड्राइंग की थी, अपनी माँ बनाई थी और उसके पेट पे लेटी भी है, और वो पिक्चर काफी मशहूर हुई, जगह पे लोगों ने देखी। मगर उससे पता चलता है कि उस बच्चे की महरूमी को आप सोचें, मगर कितनी बेदर्दी से आज कितने ही बच्चे यतीम खानों में दाखिल करा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके खानदान उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो माल देना, ये मैं आपको तो बाद में सिखाऊं, पहले तो सबसे ये बात है कि उनको एक घर चाहिए जिनमें उनको शफकत दी जाए, मोहब्बत से रखा जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारे यतीम बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी ली हुई थी। बहुत सारे यतीम बच्चे उनके पास थे, जो बे औलाद जुड़े होते हैं वो यतीम बच्चों को अडॉप्ट कर ले, ऐसे बच्चों को जिनको कोई रखने वाला नहीं, हो सकता किसी का चचा भी ना हो सकता किसी का कोई भी खानदान में ना हो, तो वो बच्चे कहाँ जाए। और फिर उनके जो हकूक की प्रोटेक्शन है, खास तौर पे उनके जो माल है ना, उसके ऊपर लोगों की नजर होती है कि अगर तो मालदार बच्चा है तो उसको घर में रखो, नौकर की तरह बना के रखा हुआ है लेकिन उसका माल सारा खा रहे हैं। और सबसे पहले जो शरीका होता है, जैसे चचा वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं। अब वो बेवा औरत को कौन पूछता है, उसकी कौन सुनवाई, उसकी क्या सुनवाई, वो बेचारी तो एक बेसहारा सी औरत है, उसको का तो कोई बस नहीं चलता। तो यतीमों का माल धड़ल्ले से खाया जाता है। तो कहा गया नहीं, आ तो लिया तमाम वाला, दो यतीमों को उनके माल और बगैर खयानत के दो, पूरा पूरा दो। और आपने खयानत का पढ़ लिया था ना पिछली सूरत में, खयानत तो एक चादर के बराबर भी कर ली, एक सुई के बराबर भी कर ली, तो वो खयानत की भी चीज आग बन के उस आदमी के ऊपर भड़क रही थी कब्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि वो कैसे आग बन के भड़क रही है उसके ऊपर। अल्लाह अकबर, एक जरा सी भी खयानत नहीं करनी। जब वो बालिग हो जाए, उनके माल उनको दे दो, उनकी कोई दुकान नहीं है बाप की छोड़ी हुई, कोई उनकी जायदादें हैं, कोई मकान है, कोई कुछ है, जो भी उनके माँ बाप ने छोड़ा, अब ये यतीम बड़े हो गए, उनको दो उनका जो माल है। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, अब ये आप अपने जहन में लेकर आए, आपने अपने माशरे में देखे होंगे, कोई ना कोई तो यतीम आज तक देखा होगा ना, बाज लोगों के खानदानों में होते हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि यतीम का वली जो है, जो भी उसका सरपरस्त है, उसका अच्छा माल रख के अपना खराब माल उसको नहीं देते। वो ऐसे करते होते थे, अपना अच्छा माल उसका अच्छा माल रख लिया और अपना खराब माल उसको दे दिया। चीजों की गिनती पूरी करनी है ना, तो ठीक है गिनती तो पूरी हो गई, चाहे मवेशी जानवर हैं चाहे कोई और सामान वगैरह है, अपना गंद बला उसके खाते में डाल दिया, खुद उसका अच्छी अच्छी चीजें खुद रख ली। आजकल तो यतीम नहीं भी हो, कोई भी कमजोर तबका है ना, उसके साथ यही किया जाता है, ऐसा ही हाल किया जाता है ना, क्योंकि जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, कोई कोई पता है कि किस इसके पीछे कोई आएगा नहीं, उनके साथ यही किया जाता है। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके माल ना खाओ अपने मालों के साथ मिला के, यानी ऐसे गड़बड़ ना कर लो तो पता ही ना चले। और जब पता ही नहीं है, कोई खाता नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके बाद जो मर्जी खा लो, जो मर्जी कर लो, माल हड़प कर दो, मिक्सअप जो कर दिया, बाद में बड़ा आसान होगा, लोगों को कह देंगे देखा हमने इतना दे तो दिया, हालांकि उसका जो माल था वो तो किसी और क्वालिटी का था, ये कोई और क्वालिटी है, या ऐसे मिक्स कर दिया पता ही नहीं चलता, कारोबार में लगा दिया, कहीं और ऐसे लगा दिया। इन्नहु काना खूबन कबीरा, ये बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये यानी चाहे आप यतीम को उसका नहीं देते, वो भी अब सारा यूज करते रहे, यतीम की चीजें वो सारा खानदान यूज कर रहा है, तो क्या रहेगा उसके लिए, वो बड़ा होगा तो वो बस छोटे छोटे, आपको आगे पता चलेगा, ऐसे नहीं है आप समझ सकते कि वो कोई बड़ी चीज हो, कोई जायदादें होंगी तो देनी, चाहे छोटी सी चीज क्यों ना, ये उसकी है। अब वो पूरा खानदान इस्तेमाल कर रहा है, पूरे खानदान ने उसको खराब खरूब कर कर के फेंक दिया हुआ, उसकी चीजें हैं, कोई उसके एसी हैं, पंखे हैं, उसके माँ बाप छोड़ गए हुए थे, वो सारी चीजें बिल्कुल रद्दी करके, जब तक वो बड़े हुए उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो ये नहीं कर सकते ना, अपनी गंद बला चीजों को उसके खाते में डाल सकते हैं और उसकी अच्छी चीजें ले सकते हैं, ना उसके माल को खा सकते हैं अपने माल के साथ मिला के ताकि पता ही ना चले। क्योंकि ये बड़े गुनाहों में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचो। सात ना मुबिकात है, सात ऐसे गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह है। और उनके अंदर क्या है, शिर्क करना, जादू करना, कत्ल करना किसी को, किसी जान को जिसको अल्लाह ताला ने कत्ल करने का नहीं कहा गया, यानी उसकी कोई सजा के तौर पे नहीं है या कुछ, उसको कत्ल कर देना ना हक, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद से पीठ फेर के भागना और पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना, ये हैं बड़े बड़े गुनाह। और जो इन गुनाहों के अंदर मुलव्वस होता है, जिनको अल्लाह ने फरमा दिया कि ये बड़े गुनाह हैं, फिर आप अंदाजा कीजिए कि उसका फिर अंजाम क्या होगा, कबीरा गुनाह है। अल्लाह हु अकबर। अब एक और बात, ये इसके अंदर हदीस आती है जामे अल बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मेराज पे देखा था कुछ लोगों के होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, और उनको ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया गया जो उनके होंठों को पकड़ रहे थे, फिर उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे थे जो उनके नीचे से निकल भी जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा है, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो जुल्मन यतीमों का माल खाते हैं, और वो दर हकीकत अपने पेटों में आग खा रहे हैं। और ये आगे भी आयत आएगी, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितू फिल यतामा, और अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीमों के साथ, यानी यहाँ पे खास तौर पे यतीम बच्चियों की, लड़कियों की बात आ रही है, कि अगर तुम्हें ये डर है कि तुम इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी अब आप ये अंदाजा करें कि वो बच्ची जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई है, अब इस वक्त वो जो उसका सरपरस्त है, वली है, वो ये सोचता है कि मैं क्यों ना इससे शादी कर लूं, या अगर चचा है तो वो कहता है मैं अपनी बेटे की शादी इससे कर देता हूं, तो इसकी सारी जायदाद ना हमारे खानदान में ही रहेगी। ऐसा होता है ना बहुत दफा, अब वो बच्चा चाहे 6 7 साल 7 साल का है, वो जवान लड़की है, उसकी शादी पकड़ के उसके साथ कर लेते हैं, इसलिए कि जायदाद तो हमारे घर में ही रहे ना, ये ना बाहर जाए। तो फरमाया कि अगर तुम्हें ये डर है ना कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये इंसाफ नहीं है, फिर यहाँ खुद इंसाफ नहीं का, खुद वो आदमी है, उसकी किफालत के अंदर ये बच्ची थी, अब इसने सोचा कि मैं इससे निकाह कर लेता हूँ, अब लेकिन उसको पता है कि मैं इससे इंसाफ नहीं कर सकूंगा, यानी उसको इंसाफ एक ना करना ये भी है कि जितना मेहर उसको बाहर मिलना था उतना तो देना ही, या तो कम करके देना, या देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी मिल्कियत ही है ना, घर की बात है, इसमें क्या बात है, ये तो घर की बात, हम घर की बात कह के जो है ना सारे हकूक को सलब कर लेते हैं, वो घर की बात है ना। तो इसके साथ शादी कर ली उसने, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, और उस बच्ची के पीछे किसने आना। बुखारी में ये रिवायत है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आयत का मतलब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि ये जिक्र उस यतीम लड़की का है जो अपने वली के कब्जे में, उसके माल में वो शरीक है, और उसे उसका माल और जमाल अच्छा लगता है, वो चाहता है कि इससे निकाह कर ले, लेकिन जो मेहर और जगह से उसको मिलता है उतना ये नहीं देता, तो इससे मना किया गया कि फिर वो तुम छोड़ दो, फिर जाओ किसी और से कर लो शादी, फिर इसके पीछे मत पड़ो। मजा ना कि वो लड़की है, अब उसका उसका उसके बाप का पैसा इसके बिजनेस में लगा, ये इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, मिसाल के तौर पे दे रही, अब ये अकेली वारिस है, अब इसको है कि ये कहीं अगर इसकी भाई शादी करूंगा तो मेरे तो बिजनेस से पैसा निकालना पड़ेगा, तो अपने पास ही रख लेता हूँ। दूसरा ये कि ये इसको जब माल में, यानी उसके कब्जे में उसका माल है, उसका वो शरीक है उसके माल में, अब उसको अच्छी भी लगती है, लेकिन उसको ये पता है कि ये तो एक मतलब इसके पीछे कोई है नहीं ना, तो इसको जितना भी मेहर दे दूँ क्या फर्क पड़ता है इससे, और उसके माल पे कब्जा कर लेगा, उसके जो बिजनेस में उसके बाप का पैसा लगा हुआ उस पर कब्जा कर लेगा। तो अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, इंसाफ अगर कर सकते हो तो फिर करो, अगर नहीं कर सकते ना इंसाफ, फन के हो तो निकाह कर लो, माता बालकुम, जिसको जो तुम्हें पसंद आए किसी और से, या नहीं कर लो किसी और से कर लो जहां पे तुम्हें पसंद आए। यहाँ यहाँ से एक बात बहुत अहम पता चलती है, निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको, क्या मतलब? यानी निकाह इस बेस पे, एक इसकी शर्त कह ले, या एक निकाह में ये भी देखना चाहिए कि जहां पे इंसान को पसंद आए वहां पे निकाह नहीं करने चाहिए, जहां पे दिल नहीं कर रहा निकाह करने का। मसलन बाज माए माँ बाप इतना जोर देते हैं कि जबरदस्ती कहीं निकाह करा दिया, नहीं, वो तुमने यही करना है, चाहे अब उस लड़के को कोई और पसंद है, वो कभी अपनी बीवी के साथ फिर इंसाफ ही नहीं कर पाता, या फिर वो शादी चलती ही नहीं, वो कहता सारी जिंदगी यही कहता रहता, मैं तो कहीं और करना था, मुझे तो कोई और पसंद थी, तो इस बेचारी का क्या कसूर? तो जहां पे आदमी को, जिसने शादी करनी है उसको जो पसंद आए वहां निकाह करो, क्योंकि मर्द अपना खुद निकाह कर सकता है ना, तो निकाह कर लो, उनको कहा फन की हो, उनको जरूरत नहीं होती कि वो किसी को वली बनाए, आदमी को नहीं जरूरत होती, तुम निकाह कर सकते हो जो तुमको पसंद आए। मगर बाज बच्चे अपने वालदेन की खातिर या उनके एक्सप्लॉयट करने की वजह से, ब्लैकमेल करने की वजह से वो ऐसी जगहों पे शादियां कर लेते हैं जो उनको कोई बिल्कुल पसंद नहीं होती। ठीक है, तो यहां से ये जोर जबरदस्ती के निकाह नहीं होने चाहिए, यहां से ये पता चल गया। इसी तरह लड़की का भी, निकाह जो करना है वो उसकी मर्जी से होना चाहिए, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करे, इसीलिए तो उसे कबूल कबूल करवाया जाता है कि तुम्हें कबूल है कि नहीं है। वली का तो होना अलग बात है, वली की कबूलियत अलग बात है, वो लड़की की भी रजामंदी होनी चाहिए, और इसी वजह से लड़की और लड़के को एक दूसरे को देख लेना चाहिए शादी से पहले, ये बाद में ये ना कहें ये तो मुझे पसंद ही नहीं था, या ये मुझे पसंद नहीं आई थी लड़की, ये मेरे किसी साथ कर दी, देख लेना चाहिए। मत देखने का मतलब ये भी नहीं कि आप घूमना ही शुरू कर देना चाहिए, अब ये देखना मैं मुझे पसंद आती है कि नहीं, तो चलो जरा थोड़ी देर डेट करें तो फिर उसके बाद पता चलेगा, ये नहीं है। ठीक है, तो मा ताबा लकुम मिनन निसाई, औरतों में से जो भी तुम्हें पसंद आए, मतना व सुलाता व रुबा, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, जितनी तुम्हें चाहे तुम चार की लिमिट तक कर सकते हो। और फिर तुम इनको छोड़ दो ना, इन यतीम बच्चियों को छोड़ो, तुम जाओ जाके कहीं और कर लो, दो करो, तीन करो, चार करो। यहां पे आके औरतों का एकदम मूड ऑफ हो जाता है, ये क्या बात हुई, ये क्या। अभी मुझे एक ईमेल आई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने बड़ा ये एतराज किया कि भाई जन्नत के अंदर दो औरतें मैंने सुना है कि दुनिया की मिलेंगी आदमी को, और 70 हूरे मिलेंगी, तो ये क्या बात हुई, ये कोई अल्लाह का इंसाफ है, ये कोई ये है, मैं तो समझती नहीं हूँ ये कोई इंसाफ, और अल्लाह को तो बड़ा इंसाफ वाला कहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं इतनी परेशान हुई ये ईमेल पढ़ के। ये लोगों को सोचना चाहिए, पहले पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि पहले आप ये समझ बैठे हैं कि आप जन्नत में जा रहे हैं, ये तो बात की बात है ना कि आदमियों को क्या मिलता है, किसको क्या नहीं मिलता, और यानी हमारे दिमागों के अंदर ये शायद बैठा हुआ है कि वो जन्नती तो हम ही है ना, वो तो पहले तुम वहां पहुंचने की तो कोशिश कर लो, और किस पे एतराज कर रहे हो, कुछ सोचो तो सही। उसने कहा हम तो यहाँ पे अपने शौहरों को संभाल संभाल के रखते हैं कि वो कहीं और औरतों के साथ ना चले जाए, और वहां जाके हम शेयर करें इसको, लगता है कि औरतों का दिमाग में सिवाय शौहरों के और कोई इनको कंट्रोल करने के सिवा और कोई दिमाग में है ही नहीं चीज, जिस मंजिल की तरफ जो तुम्हारा मकसद हयात है वो तो कुछ और है, तुम इसी के चीज के पीछे पड़े हुए कि इनको कैसे मैंने बस अपने साथ ही बांध के रखूं, और वहां पे भी जाके इसको कहीं और ना कोई मिल जाए, किस तरह की बातें करती हैं, इनकी अकल की इंतहा बस यहीं तक है औरतों की, बस आदमी मिले मुझे, बस ये इंतहा है, और एतराज इस पे है कि इसको ज्यादा क्यों मिल गई। औरतों को तो दो की इजाजत नहीं है, मर्दों को कैसे दो की इजाजत होगी, चार की इजाजत होगी। औरत को आदमी एक तरह से अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, क्या औरत चाहती है कि वो 10 आदमियों से इस्तेमाल हो? सीधा मुझे, मेरा आप लोगों से सवाल है, मुझे सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा, लेकिन उनको ये है कि नहीं हमें जन्नत में भी जाके इतने ही आदमी मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकल दे औरतों को भी। तो यहाँ से हमें पता चला कि उन आदमी को ये इजाजत दी गई कि वो दो तीन और चार निकाह करें, उस माशरे के कॉन्टेक्स्ट में पहले रख के देखते हैं और फिर आज के भी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे। उस माशरे के अंदर जहाँ पे ये आयात उतर रही है ना, वहां पे एक आदमी की 10 10 बीवियां, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यानी जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक्त फरमाया था, एक सहाबी हैं उनकी 10 बीवियां थी, तो उनसे फरमाया कि आप इनके अंदर से कोई 4 रख सकते हैं, बाकी को आपको तलाक देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अब इसकी लिमिट आ गई भी है। एक की 9 बीवियां थी, उनको भी यही कहा गया, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं थी। इस्लाम ने कहा नहीं, देर हैज टू बी अ लिमिट, आप 4 से ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते। अब आज के माहौल के मुताबिक, आज तो आपको लगता है कि एक है, तो अब इनको शायद कह दिया गया कि आप 4 ही करो। हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो 4 करे, जरूरी नहीं है कि 4 करे, मगर अल्लाह ने इजाजत दे दी। इजाजत क्यों दी भाई, क्यों ये हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई और ये हो गया। हालांकि अगर आप देखें, इसमें इतनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की। पहले तो आपको पता है हमारे लोग आजकल शादियां करने से ही कतरा रहे हैं, निकाह करने से ही, शादी करना ही नहीं चाहते। एक जगह मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था कि जब दूध बाजार में मिलता हो तो गाय ला के घर में बांधने की जरूरत क्या है। आप समझे बात को, यानी हर चीज तो अवेलेबल है, तो फिर क्या जरूरत है शादी करने की। लिविंग टुगेदर किसी के साथ भी करो और बस छोड़ दो। हमारा दीन इस चीज को हराम करता है, और हमारा दीन क्या कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स घर बसाने की ताकत रखता वो निकाह करे। क्यों? इसलिए कि निकाह नजर को ज्यादा नीचे रखता है, शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करता है, और तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे शहवत को कम करते हैं, इंसान की जो ऐसी ख्वाहिशात है उनको कम करते हैं। और ये निकाह करना अंबिया की सुन्नत है, ये सोचना चाहिए। आदमी के लिए कहा गया कि दुनिया की बेहतरीन मता जो है वो नेक औरत है, और ये भी एक हदीस में आता है इब्ने माजा की है, कि अल्लाह के खौफ के बाद मोमिन के फायदे की सबसे अच्छी चीज उसकी नेक बीवी है। यानी इंसान के लिए कितनी बड़ी एक ही इस ये कितना बड़ा इसको फायदे की बात बताया गया। और वो कहते हैं कि हमें शादी क्यों करें, हम औरतें बैठी नहीं हैं, आदमी शादी नहीं करना चाहते। तो ये तो इसको तो इतनी बड़ी बात कहा गया कि ये तो इतना बड़ा नफा है जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है। फिर आप ये सोचें कि इंसान को बीवी के जरिए सुकून हासिल होता है, अल्लाह ताला ने ये रिश्ता सुकून का बनाया, इससे अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाता है वो औलाद इंसान के लिए कितनी बड़ी खैर का बायस है। उसकी तरबियत, उसकी जो परवरिश है, उसके ऊपर अजर मिल रहा है, उस औलाद को इंसान जो उसकी किफालत करता है, उसके ऊपर जो मेहनत करता है, उसका सिला पाता है अल्लाह ताला, उस कमाई को भी जो कमाई कर रहा है सिर्फ इस औलाद को और इस घरवाली की यानी इनकी जरूरियात पूरी करने के लिए, उस कमाई को भी इबादत कहा गया। अगर वो हलाल किए तो वो भी इबादत कर रहा है, वो इबादत में है जब तक वो कस्बे हलाल कमाता है। निकाह के जरिए फिर जो औलाद होती है वो इंसान को, इंसान के लिए दुआएं करती है, उसके लिए सदका जारिया बनती है, इस उम्मत में एक इजाफे का बायस बनती है। और शादीशुदा इंसान माशरे में अकेला नहीं होता, उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है। फिर जब वो इन औलाद की शादियां करता है, उसे नई रिश्तेदारियां पैदा होती हैं। अगर उसकी औलाद फौत हो जाए कम उम्री में, तो वो औलाद वालदेन की शिफात करेगी कयामत के दिन, और फिर वो औलाद जो नेकियां करती रहे उसका अजर माँ बाप को मिलता रहता है। बस औकात औलाद की नेकियों की वजह से वालदेन की मगफिरत हो जाती है। तो कितने निकाह के फवायद हैं। फिर सबसे बड़ा देखिए ये फायदा कि इंसान की शहवत का जोर टूटता है, वो शैतान के शर से महफूज हो जाता है, उसकी नजर पाकीजा हो जाती है, बदकारी से बच जाता है वो। बीवी आदमी बीवी बच्चों की जब जिम्मेदारियां उठाता है, उनके फराइज पूरे करता है, तो उसके ऊपर भी अजर पाता है। यहां तक कहा गया एक हदीस में है कि वो बेहतरीन सदका है जो इंसान अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालता है ना, तो वो भी एक सदका है, वो बेहतरीन सदका कहा गया उसको। इसी तरह अगर बेटियां हैं उसकी, तो उनके ऊपर जो खर्च करेगा, बेटियों के भी बारे में आया और बहनों के भी बारे में आया, कि जो उनके ऊपर वो खर्च करता है, तो हद तक कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर दे, तो उसके लिए वो दोजख से हिजाब हो जाएंगी, जो इंसान अपनी दो बेटियों या दो बहनों पे खर्च करता है, हत्ता कि वो उनकी शादी हो गई कहीं, या वो मतलब जो ऑन देयर ओन हो गई, तो वो उसके लिए दोजख से हिजाब हो जाएंगी। तीन बच्चे अगर किसी के फौत हो जाते हैं और उसके ऊपर वो सब्र करता है, तो और दो बच्चों के बारे में भी हदीस में आया, क्योंकि एक आदमी ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, तीन के बारे में पूछा और दो के बारे में भी पूछा, सब्र करें अगर वो औरत, तो दोजख से हिजाब बन जाएंगे वो बच्चे उसके लिए। तो यानी निकाह के बहुत सारे फवायद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत को देख के खुश होंगे। तो निकाह होगा तो औलाद होगी ना, उसके जरिए फिर इंसान ये कह सकते हैं ये मेरे नबी इस बात से खुश होंगे। और आज के जमाने में जहां पे इतनी बाहर बेहयाई है, अपनी इज्जत को महफूज रखना सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब इंसान निकाह करे, वरना वो कोई बुराई के अंदर पड़ सकता है। इससे देखें, जब आदमी निकाह करता है तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं, उस सोचें कि वो कितनी बड़ी खैर कर रहा है कि वो एक औरत की इज्जत को भी महफूज कर रहा है, उसको एक छत दे रहा है। क्योंकि औरत जब तक बाप के घर में होती है, बाप का साया होता है, लेकिन उसके बाद बाप हमेशा तो साथ नहीं रहता ना। उनकी औरत को चाहिए होता है कि उसके ऊपर शोहर का साया हो, ताकि लोग उसकी तरफ मैली नजर से ना देखें। तो आप देखें कि एक औरत को भी उसने तहफ्फुज़ दिया है, प्रोटेक्शन दी है। फिर औरत आदमी से अपनी हाजत पूरी करते हैं, लज्जत उठाते हैं, और वो जो लज्जत उठा रहे हैं, वो जो अपना ताल्लुक आपस में कायम करते हैं, उसके ऊपर भी उनकी नेकी लिखी जाती है। और इसी तरह ये भी है कि देखें, बहुत सी इबादात जो जो दरवेश लोग नहीं कर सकते, जो दुनिया को छोड़ के एक तरफ हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते, वो ये बंदा कर सकता है। जी, यानी बहुत से सवाब के काम जो शादीशुदा है। और जब इंसान ये जो उसके शहवानी जो ख्यालात हैं इनसे निकलता है ना, तो तभी वो कोई पॉजिटिव काम कर सकता है, वरना उसे दिमाग के ऊपर सारा वक्त यही सवार रहता है, मुफीद काम वरना वो नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जिन तीन लोगों की अल्लाह ने मदद का अपने जिम्मे करार दिया है, उनमें से एक वो भी है जो अपने आप को पाकीज़ा रखने की खातिर निकाह करता है, एक वो भी है। ये अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मेरे जिम्मे है इनकी मदद करना जो पाकीज़गी की खातिर निकाह करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि निकाह की फजीलत कितनी है, निकाह की अहमियत कितनी है, इसका फायदा कितना है। क्योंकि आज के वक्त में एक निकाह भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते जाओ और उसी के ऊपर इतनी इतनी बड़ी उम्रों के हो जाते हैं और फिर भी नहीं शादियां करते, मानते ही नहीं शादी करने पे। तो ये फवायद पता होने चाहिए। फिर अब जहां तक ये आता है कि एक से ज्यादा बीवियों का क्या फायदा, या क्या उनका उनकी क्यों क्या वजूहात, उस जमाने का तो समझ आ गई, आज तो आज क्या फायदा हो सकता है इस चीज का। तो देखें, एक तो बात यह है कि आज के दौर के अंदर औरतों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हर जगह पे आप देखें मर्द कम है और औरतें ज्यादा हैं, हर जगह में, हर मुल्क में आप देखें, कहीं डबल है कहीं 4 टाइम्स है। ठीक है, अब इस चीज को एक तरफ रख दें इस वक्त कि मेरा शोहर ना कहीं जाके शादी कर ले, बात यह है कि देखें ये एक नेचुरल नेचुरल इंसान के अंदर वो होती है, किसी औरत के अंदर भी, उम्महातुल मोमिनीन में भी आपस के अंदर एक दूसरे के लिए ऐसे नहीं था कि बिल्कुल कोई कोई ऐसे ही बिल्कुल बहुत ही शीरो शक्कर ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल वो, उनके अंदर भी कोई ना कोई आपस में एक दूसरे के लिए हो जाती थी बात। तो ये रिश्ता ही ऐसा है, ये बात ही ऐसी है कि कोई औरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मगर आप एक इससे निकल के बाहर और अपने दिमाग में से ये निकाल के कि मेरा शौहर ना कहीं कर ले, इस चीज को अल्लाह का जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक कानून दिया है कि चार से ऊपर नहीं करनी, और जो इजाजत मर्द को मिल गई है चार तक करने की, उसके पीछे की जरा फवायद और हिकमतों को जरूर जान ले, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ औरतों का रब नहीं है, वो मर्दों का भी है। उसको पता है आदमी को उसने पैदा किया है, उसको पता है इसकी जरूरत क्या है। एक तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द को बीवी की, पहली बीवी की इजाजत की जरूरत है दूसरी शादी करने के लिए, हालांकि उसको नहीं है। जब अल्लाह ने इजाजत दे दिया तो उसको अब बीवी की इजाजत की क्या जरूरत, अल्लाह ने उसको इजाजत दी भी, ठीक है। तो अब जहां पर औरतों की शरह पैदाइश लड़कियों की मर्दों से ज्यादा है, वहां पे अगर एक आदमी एक ही शादी करता है तो आप देखें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, कि जो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बगैर शादी के रहेंगी, इसका मतलब है। और बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो बगैर शादी के रहने की वजह से नाजायज कोई दोस्तियां, नाजायज तरीके अपनी ख्वाहिश पूरी करने के इस्तेमाल करेंगी। तो ये दोनों ही सूरतें सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिलउमूम मर्द के अंदर जो जिंसी ताकत है वो एक तो ज़्यादा लंबे अरसे तक कायम रहती है, औरत की मेनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म होके रह जाती है जबकि वो 40-50 साल की होती है, और मर्द अभी मसलन उससे जितना भी बड़ा है, 5-6 साल बड़ा है, उसके अंदर अभी वो ताकत होती है। अब अगर एक आदमी का सिर्फ एक ही निकाह हो तो वो अपनी जो बाकी जिंदगी है जिसमें औरत की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, उसके अंदर या तो वो बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिश पूरी ना करे, या फिर वो कोई नाजायज तरीके इस्तेमाल करे, या नाजायज जगहों पे जाए, हराम जगहों पे जाए और वहां पे जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करे। दोनों ही गलत है। इसी तरह बाज दफा औरत बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती और आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चा उसका हो, औलाद हो। अब अगर ये कह दिया जाए सिर्फ एक ही कर सकते हैं, तो या तो वो इस एक को तलाक दे फिर दूसरी करे, या इसको भी रख ले और दूसरा निकाह कर ले, क्या ज्यादा बेहतर लगता है। एक और बात होती है, बाज दफा आदमी की बीवी बीमार हो जाती है, उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो शौहर सेहतमंद है, ये बीमार है, वो अपने शौहर की नहीं जरूरत पूरी कर सकती। अब भी अगर एक की ही इजाजत हो तो या तो वो औरत को तलाक दे फिर दूसरी लाए, या इसको रख के ले आए, या फिर वो कहीं और जाके हराम जरिए पे पूरी करे। जाहिर है कोई भी और जरिया जो अपनी बीवी के अलावा है वो हराम ही है, कोई भी और तरीका या कोई भी और जगह वो हराम है सिवाय अपनी बीवी के, तो वो जो भी करेगा वो हराम ही होगा। और एक ये भी हो सकता है, मर्द है, हो सकता है अपनी बीवी है लेकिन उसको कोई और ऐसी पसंद आ जाती है कोई औरत कि वो उसकी तरफ मायल हो जाता है और वो चाहता है कि वहां पे वो शादी कर ले, लेकिन अगर एक ही शादी की इजाजत हो तो सिर्फ पहले या तो इसको तलाक दे तो फिर दूसरी करे, या फिर दोनों को रख ले। इसी तरह आप ये देखें कि एक अगर बीवी हो तो बाज दफा आदमी के जो शहवत की होती है बहुत ज्यादा होती है कुव्वत उसके अंदर, और औरत को माहवारी पीरियड्स हैं या फिर बच्चे के बाद निफास के दिन हैं उसके, जिसकी वजह से आदमी अपने आप पे काबू नहीं पा सकता और वो कहीं और जाके कुछ गलत काम करता है, तो ये फिर हराम हो जाता है। अगर उसके पास चार बीवियां होंगी तो कोई ना कोई जरूर होगी जो कि उसके लिए हमेशा, यानी जो उसके लिए अवेलेबल होगी। तो यानी आप एक बहुत नीचे जाके कोई चीज को ना देखें कि बस मैं अपनी बात करूं, आप इसको एक ब्रॉडर सेंस में देखें कि क्या हिकमत है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव बात तब आती है जब आपको लगता है हाय हमारे साथ ज्यादती हो गई, हाय हमारे लिए क्यों, हाय मर्दों को क्यों ये इजाजत मिली, और आप उसके पीछे जो हिकमतें हैं उनको नहीं समझते। और आज के दौर में जिस कदर ज्यादा बेहयाई, फहाशी और इस किस्म की चीजें जो कि इंसान के सेक्सुअल जज्बात को उभारती हैं, वो इतनी ज्यादा हैं, चाहे वो इंटरनेट देख लें, चाहे वो बिलबोर्ड देख लें, चाहे वो फिल्में देख लें, चाहे उरियानी नंगापन जितना बाहर है वो देख लें, ऐसे ऐसी बातें, ऐसी खबरें, ऐसे टूल्स, ऐसी सब चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं कि कोई भी आदमी बहुत आसानी से किसी भी बुराई के अंदर पड़ सकता है, हराम रास्ते पर जा सकता है। ऐसे में अगर उसकी बीवी ही नखरे करने वाली हो, या वो कभी उसके लिए अवेलेबल ही ना हो, या वो उसके पीरियड ही ख़त्म ना होते हो, उसको ऐसी बीमारी हो कि वो बस अपने आप को समझती है कि बस मैं इसी के अंदर हूँ, या फिर वो निफास में हर साल हो है, उसके उसको इतने दिन लग जाते हैं, या कोई भी और वजह हो सकती है, या उसका दिल ही मायल नहीं होता, तो फिर आप खुद बताइए कि एक आदमी के जिना में पड़ने के कितने चांसेस हैं। आंखों के जिना, कानों के जिना, और शर्मगाह तो जिना ही करती है, कितने ज्यादा उसके लिए चांसेस हैं, और जब अवेलेबिलिटी भी है तब वो किस तरफ जा सकता है। आज बाज औरतों का यह ख्याल है कि मेरा शोहर जाके बाहर किसी के साथ भी कुछ भी कर ले, शादी ना करे बस, तो यानी हराम कर ले, शादी ना करे। तो अल्लाह ने आपकी देख के कोई अहकामात कवानीन नहीं नाजिल करने, अल्लाह ताला के कवानीन सबकी भलाई और पूरे माशरे को देख के कि जिसमें उनकी खैर ख्वाही और भलाई है उसके मुताबिक है, एक औरत के नहीं कि मेरा दिल नहीं चाहता है बस मेरा मियाँ मेरा ही रहे, मेरा शौहर कहीं और ना देखे। तो अगर एक आदमी की चार बीवियां हों तो वो, या एक से ज्यादा बीवियां हों, तो फिर ज्यादा ये चांस है कि वो इस इन बुराइयों में नहीं पड़ेगा। मगर इसकी एक शर्त रख दी गई, फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू, अगर तुम्हें ये डर हो ना कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन औ मा मलकत अईमानकुम, तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है, या तुम्हारी जो मिलके यमीन है, यानी तुम्हारी जो दाएं हाथ के जिनके तुम मालिक हो, तुम्हारे दाएं हाथ जिसके मालिक हैं, यानी लौंडियां। आज लौंडियां मौजूद नहीं है, इनके साथ भी ताल्लुक कायम किया जा सकता था, जो जंगी कैदी होके और फिर आती थी और मर्दों में तकसीम हो जाती थी, जो जिसकी मिल्कियत में जो होती थी वो उसके ऐसे ही उसके लिए होती थी कि जैसे अपनी बीवी हलाल है। अब इसका तो सवाल इसलिए इस वक्त हम इस पर नहीं डिस्कशन करेंगे कि जब है ही नहीं तो फिर क्या, इस वक्त कोई नौकरानियां जो हैं उनको बाज लोगों ने समझ लिया वो लौंडियां हैं, वो लौंडियां नहीं, वो आपकी जरखरीद नहीं है, ना ही वो कोई जंगों में से मिली है, इसलिए इनका सवाल आज है ही नहीं, पूरी दुनिया में ये नहीं है। तो जब है ही नहीं तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करके इस वक्त क्या आपको मिलेगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल नहीं कर सके तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि इस्लाम हमें ये बताता है कि असल चीजें ये नहीं है कि शादियों पे शादियां करते जाओ और शादियों से बड़े खुश हो रहे हैं और बस शादी बड़ा मजा आएगा, असल बात ये है कि हकूक एक दूसरे के अदा करने हैं। अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम दूसरे का हक अदा कर सको तो फिर तुम मत करो ये। फला तमीलुल कुल्लल मैली फतदरुहा कल मुअल्लका, अल्लाह ताला ने इसी सूरत में आगे जाके फरमाया, एक की तरफ ही ऐसे मायल ना हो जाना कि फिर दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। अक्सर आपने देखा होगा हमारे माशरों में, जहां पे किसी आदमी ने, कभी आपने सुना हो कि किसने दूसरी शादी कर ली, तो बिजली का हाल क्या होता फिर, वो कहती है मुझे तलाक ना दो, मुझे बस रखे छोड़ो, तो वो उसको रख तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ सलूक क्या होता है और उसके बच्चों के साथ क्या सलूक होता है, मैंने अब जो औलाद उससे थी उनको तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उस औरत का कोई हक उसको नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि देखा गया है कि जायदादों तक में उनको कोई भी नान नफका तक नहीं देना, और वो रुलती फिरती रहती हैं और अपने वालदैन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो बीवियों में अदल जरूरी है, कि अदल में क्या चीज है, अदल में ये नहीं है कि एक जितनी मोहब्बत सबसे हो, देखिए एक जितनी मोहब्बत बाज दफा इंसान को अपनी औलाद में भी सबसे नहीं होती, कोई बच्चा ज्यादा प्यारा होता है कोई कम होता है, तो बीवियों में एक जितनी कैसे हो सकती है, बल्कि यहाँ पे अदल से मुराद क्या है कि एक जो वक्त है ना, एक जितना सबको मिलना चाहिए, अगर एक रात इसके साथ रहता तो एक रात ही दूसरी के साथ भी रहे, इसी तरह ना नफका इसी तरह जो भी और मादी चीजें हैं उनके अंदर इंसाफ होना चाहिए, बराबरी, बिल्कुल जितना इसका उतना ही उसका। अब ये बहुत ही कम हो गया है कि एक से ज्यादा कोई भी शादियां करता है, ज्यादातर हमारे माशरों के अंदर तो एक पे ही मर्द इक्तफा करते हैं, क्योंकि खर्चे और ये सब चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि आज एक घर को एक आदमी उठा ले तो वो ही बहुत बड़ी बात है, और एक से ज्यादा की क्या हो सकती है। तो इसलिए ये भी आज औरतें शिकायत तो बहुत करती हैं, लेकिन शायद ही कोई औरत हो जिसके शौहर ने दूसरी शादी की हो और वो भी साथ रहती हो। तो अदल के तकाजों को पूरा करने की आदमी को देखनी चाहिए कि मेरे पास इतना मैं इतना कर सकूंगा कि इनमें इंसाफ हो, क्योंकि जिसकी दो बीवियां हदीस में आता है, और वो उनमें अगर अदल ना करे तो कयामत के दिन वो आधे धड़ के साथ उठाया जाएगा। तो अदल भी मुश्किल चीज है, ये आसान चीज नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अदल फरमाते थे, अल्लाह के आपको हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी यानी उस वक्त मरजुल मौत तक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इजाजत ली कि अगर आप इजाजत देती हो तो फिर मैं इनके घर के अंदर रह लूं। बीमारी में भी एक एक घर में जाते थे, बीमारी में भी। लेकिन जब बिल्कुल ही हालत ऐसी हो गई कि डिपेंडेंट हो गए कि किसी के सहारों को लेके फिर चलते थे, तो उस वक्त आपने इजाजत ली उनसे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस चीज की खुली इजाजत दी हुई थी कि जिसके पास जाएं जिसके पास नहीं जाएं, वो नहीं आपके ऊपर पाबंदी थी। और जिन लोगों के ऊपर पाबंदी है कि उनको अदल ही करना है, वो देखें कि आज कितना अदल हो रहा है। दालिक अदना अल्ला ताउलू, ये ज्यादा करीब है इसके कि तुम अदल करो, यानी ये बात ज्यादा करीब है इसके कि तुम एक तरफ झुक जाओगे, यानी अगर तुमने अदल ना किया तो तुम एक तरफ ही मायल हो जाओगे, फिर एक के साथ ही एक को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, ले जा रहे हैं, सैरें हो रही हैं, ये हो रहा है, दूसरे बेचारे देख रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और दूसरा भी इसका माना है अल्लाह ताउलू, तुम अयालदार ना हो जाओ, यानी ज्यादा बहुत ज्यादा अयालदार, बहुत ज्यादा बड़े बड़े खानदान हो जाए कि फिर संभाले ही ना जाए, तो फिर तुम्हारे लिए एक ही सही है। जैसे आज के वक्त के अंदर है कि बहुत सारे ऐसे हालात हो चुके हैं कि एक की जरूरतें पूरी करने आदमियों के लिए मसला होता जा रहा है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا